अरमान ने रश्मि को बताया। नानी माँ की हालत देखकर आस्था फेंट हो गई। तब रश्मि ने आस्था को जल्दी ही एक इंजेक्शन दे दिया था। अब आगे, जिसे थोड़ी देर बाद आस्था को भी होश आ गया और होश में आते ही आस्था ने नानी माँ के बारे में पूछा। तब रश्मि ने देर ना करते हुए आस्था को बता दिया था कि नानी माँ की जान तो बच गई है, लेकिन उन्हें शायद किसी बड़ी चीज़ का सदमा लगा है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में है, और इसे तुम एक छोटा मोटा कोमा भी मान सकती हो। देखो आस्था, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुम खुद मेडिकल लाइन में हो और तुम्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि किसी पेशेंट को किस तरह गहरी चोट लग जाए तो उस पर क्या असर हो सकता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि नानी माँ बिल्कुल ठीक हैं, उनकी जान बच गई है, लेकिन वो कोमा में है। जैसे ही रश्मि ने ये कहा, आस्था फूट फूट कर रोना शुरू कर दी थी और अरमान उसे संभालने लगा। वहीं अरमान ने दादाजी की ओर देखा, दादाजी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। तब अरमान ने उनसे पूछा कि अचानक से ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तब दादाजी ने बताया कि वो अपने कमरे में थे, अचानक उन्हें शारदा बहन जी की आवाज़ आई और जब वो वहाँ आए उन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ वहाँ पड़ी हुई है और उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था। तब आस्था रोते रोते बोली, हमने आप सबको मना भी किया था कि पिशाच वाले पेड़ के पास मत जाइए, देखा आपने उस पिशाच ने ये क्या कर दिया। वरना कौन नानी माँ पर हमला करेगा, वो पिशाच ऐसे ही कर सकता है, ऐसा बोलकर आस्था रोने लगी थी। वहीं आस्था की मनगढ़ंत और अंधविश्वास वाली बात सुनकर सब पूरी तरह से चौंक गए थे। वहीं आहान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि नानी माँ से उसे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट थी। सभी लोग नानी माँ की हालत को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि बहुत कम समय में सभी लोग नानी माँ के बेहद करीब हो गए थे। वेल, जो रश्मि ने बोला यही बात ध्रुव ने भी सबको बता दी थी। साथ साथ बोला कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा नानी माँ को बचाने में और जल्द से जल्द ठीक करने में। तो सभी लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। वेल, वहीं दूसरी ओर सब दुर्जन सिंह को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला कि उन शहरी लोगों ने नानी माँ को कहीं भी अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया है बल्कि घर पर ही उनका इलाज कर दिया है, तो दुर्जन सिंह थोड़ा सा चौंक गया और उसने अपने कुछ आदमियों को उन शहरी लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए शहर में भेज दिया था कि पता लगाएं आखिरकार ये लोग हैं कौन, असल में ये अरमान सिंघानिया कौन है। साथ ही साथ ये भी, ध्रुव, रश्मि, जितने भी लोग मौजूद थे उन सब की हिस्ट्री वो निकलवाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दो भरोसेमंद आदमियों को शहर में भेज दिया था। वहीं शारदा महल में, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी थी तो इसीलिए सभी लेडीज़ को उनके कमरों में भेजने के बाद आकाश, सुमित, आहान, ध्रुव और साथ ही साथ अरमान एक जगह जमा हो गए थे। वो पांचों इस वक्त एक साथ मौजूद थे। अविनाश इस वक्त आस्था के साथ था, क्योंकि आस्था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी सी थी। वो नानी माँ की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। उसके रिश्तों के नाम पर उसके पास अगर कोई था तो सिर्फ और सिर्फ नानी माँ ही तो थी, वरना उसकी तो ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। अब अविनाश आस्था को अच्छी तरह से संभाल रहा था। वहीं अरमान इस वक्त उन पांचों के सामने खड़ा हुआ। अरमान का डेविल किंग रूप एक बार फिर निकलकर बाहर आ रहा था। उन चारों को सीरियस लुक देते हुए बोला कि पता लगाओ कि पिशाच के पेड़ की क्या कहानी है, अपने तरीके से इस अंधविश्वास को ख़त्म करो, पता लगाओ ये कहानी क्या है और वो आदमी कौन था जो वहाँ मिला जिसे आस्था चाचा जी कह रही थी, और नानी माँ पर किसने हमला किया इस बात के बारे में भी पता लगाओ। तब वो चारों बिल्कुल सीरियस टोन में बोले, आप फिक्र मत कीजिए किंग, काम हो जाएगा। जिस वक्त अरमान डेविल किंग बनकर उन लोगों को ऑर्डर दिया करता था तब वो लोग उसे किंग कहकर ही पुकारते थे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त होटल में एक साथ रुकने के बाद अबीर और साथ ही साथ प्रियंका वहां से निकल चुके थे। ऑलरेडी वो गांव के करीब भी पहुंच चुके थे, लेकिन अब क्योंकि उन्हें शाम हो गई थी और प्रियंका अब जल्दी ही गाँव में पहुँच चुकी थी, लेकिन गाँव में पहुँचते ही उसे खुसर फुसर की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। तब प्रियंका खुद को रोक नहीं पाई, एक जगह कुछ लेडीज के पास खड़ी हुई थी। उसने उनसे पूछा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है, आप सब लोग इस तरह से जमा क्यों हैं, क्या गांव में कुछ हुआ है क्या। वहीं अबीर सिंह राठौर भी जानना चाहता था कि इस वक्त गांव में इतनी हलचल सी क्यों है, क्योंकि शारदा जी पर हमला हुआ था। ये बात दुर्जन सिंह के आदमी ने पूरे गांव में फैला दी थी कि पिशाच वाले पेड़ की वजह से शारदा जी पर हमला हुआ है। वहीं प्रियंका ने जैसे ही एक औरत से ये पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पर एक शारदा महल है, वहाँ पर शारदा बहन जी नाम की एक लेडीज रहती है, उन पर कल रात हमला हुआ है, उनके घर में कुछ शहरी लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने गांव के उस जगह पर जाने की कोशिश की जिस जगह पर जाना मना है, इसीलिए शारदा जी पर हमला हुआ है। जैसे ही प्रियंका ने ये सुना वो पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि जिस घर में उसकी दादी यानी कि शारदा जी रहती है तो उसे घर का नाम शारदा महल था। अब तो प्रियंका को समझने देर नहीं लगी कि ज़रूर नानी माँ पर हमला हुआ है, और वो चौंककर अबीर की ओर देखने लगी थी। वहीं अबीर भी ये गांव वालों औरतों की ये बात सुनकर और जिस घर में शहरी लोग आए हैं वो समझ चुका था कि किस घर की बात हो रही है। अब अबीर और प्रियंका जल्दी ही शारदा महल की तरफ जाने लगे और जैसे ही प्रियंका पहुंची सब लोग प्रियंका को देखकर पूरी तरह से चौंक गए थे। वहीं अरमान तो आंखों में खून लिए प्रियंका को देख रहा था, लेकिन जैसे ही प्रियंका के ठीक पीछे अबीर सिंह राठौर को सबने वहां देखा तो सबकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थीं। तब प्रियंका वहां आई और आवाज ऊंची करते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ है मेरी दादी माँ को? बोलो, जवाब दो। अब प्रियंका की बात सुनकर आस्था हैरान हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। फ्लैशबैक। और अबीर और प्रियंका अगले दिन शाम को रात के वक्त वहां पहुंचे थे। वो जल्दी भी आ जाते अगर प्रियंका ने नाटक नहीं किया होता। पूरी आराम से होटल पर कमरा मिलने के बाद वो अगले दिन तक 11 से 12 तक सोती रही। अबीर उसे उठा उठाकर थक गया था, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उन्हें यहां पहुंचने में अगले दिन भी शाम हो गई, वरना वो दोपहर से ही वहां पहुंच सकते थे। प्रेजेंट। वेल, तब प्रियंका को वहां देखकर दादाजी शक करते हुए बोले, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? तब प्रियंका कुछ पल सोचते हुए बोली, मुझे पता चला कि मेरी दादी माँ को चोट लगी है तो मैं उन्हें देखने के लिए यहाँ आ गई। अब तो सबके माथे पर बल पड़ गए थे कि नानी माँ को चोट तो अभी थोड़ी देर पहले ही लगी है, तो इतनी जल्दी भला ये दोनों शहर से गांव कैसे आ सकते हैं? तब अबीर प्रियंका की बात करेक्ट करते हुए बोला, वो हम यहाँ पर नानी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, क्योंकि प्रियंका और मैंने सगाई कर ली है और प्रियंका से मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। जैसे ही अबीर ने ये कहा सबकी आंखें हैरानी के मारे चौड़ी हो गई थी। वहीं आहान ने अपना मुंह पिचका लिया था और ध्रुव के कानों में फुसफुसाते हुए बोला कि क्या इस अबीर सिंह राठौर जैसे इंसान को ये छिपकली ही मिली थी?
देखा नहीं ये लड़की कितनी ज्यादा कैरेक्टरलेस है। मुझे समझ में नहीं आता कि अरमान भाई की जिसके साथ शादी होने वाली थी वही लड़कियां क्यों अबीर सिंह राठौर को पसंद आ रही हैं। वेल, अब सबको चौंकते हुए देखकर प्रियंका ताने मारते हुए इतराकर बोली, क्या हुआ आस्था? क्या तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही है कि मेरी जिंदगी में भी अबीर सिंह राठौर जैसा आदमी आया है? या तुम अबीर को अपने आगे पीछे घुमाना चाहती हो? तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पति नहीं है जो तुम इतना ज्यादा चौंक रही हो? जैसे ही प्रियंका ने इस तरह से टोंट भरी आवाज में आस्था से बात किया, अरमान का पारा बढ़ गया था। आगे बढ़कर इस वक्त प्रियंका का गला दबा देना चाहता था, लेकिन आस्था ने उसका हाथ झट से पकड़ लिया था। अब ये बात सच थी कि प्रियंका नानी माँ की पोती थी, तो आस्था से ज्यादा अगर किसी का हक वहां पर था तो प्रियंका का था। तो इसीलिए प्रियंका ने अब जल्दी ही शारदा महल का एक बड़ा खूबसूरत सा कमरा चुना था और वो उसे कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी और बहाना बनाते हुए बोली कि वो बहुत ज्यादा थक गई है तो उसे आराम की जरूरत है, वो सुबह नानी माँ से मिलेगी। वहीं अबीर सिंह राठौड़ भी सबकी ओर देखते हुए दूसरे कमरे में चला गया था, क्योंकि वहां पर काफी सारे कमरे थे तो कुछ कमरों में तो सब लोग ठहर गए थे लेकिन कुछ खाली थे। अब अरमान ने आकाश और सुमित को खास इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अबीर सिंह राठौर के यहाँ इस तरह से आने का पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि कहीं नानी माँ की इस हालत के पीछे कहीं इन दोनों का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि दोनों पर ही अरमान को भरोसा नहीं था।